प्रिय श्रोताओं नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी हमारे साथ आज का बाइबल अध्ययन करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से यशाया नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और इसका मुख्य विषय है मसीह का आगमन और छुटकारा। प्रिय श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस बाइबल अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। लीजिए, प्रस्तुत है ये बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी कुशल हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो आज पहली बार हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा वे भी अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त करेंगे। मैं आपको बता दूं कि हम इन दिनों बाइबल में से यशाया नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए, इससे पहले कि हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, प्रार्थना करें और परमेश्वर से सहायता मांगें। हमारे अत्यंत दयालु और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि आज के इस अध्ययन के द्वारा हम अपने जीवन में उन आत्मिक आशीषों को प्राप्त कर सकें जिसे आपने हम सबके जीवन के लिए रखा है। हमारे उन श्रोता भाई बहनों के लिए प्रार्थना है जो बीमार हैं, निराश हैं, चिंतित और परेशान हैं। पिताजी, आप उन्हें भी अपनी शांति प्रदान करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्र, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम यशायाह नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हम सब देख रहे थे कि अफ्रीका के कूश देश की भविष्यवाणी देखने के बाद अब हम मिस्र के विषय परमेश्वर का भारी वचन पढ़ेंगे जो विषाद से महिमा तक का वर्णन करता है। अध्याय 13 से 23 इसराइल के पड़ोसी राज्यों के लिए भविष्यवाणियां हैं। मिस्र का स्थान छठा है। मिस्र तो निश्चय ही एक ऐसा देश था जिसे हम यहाँ देखना चाहेंगे। यह परमेश्वर के वचन का एक महान भाग है जिसमें परमेश्वर के वचन की सत्यता प्रकट की गई है। भविष्यवाणियों का पूरा होना एक प्रमाण है कि परमेश्वर का वचन अर्थात बाइबल सच्ची है। धर्मशास्त्र के पृष्ठों में इसराइल के साथ व्यवहार करने वाले देशों में मिस्र सबसे अधिक प्रकट है। धर्मशास्त्र में व्यक्त किसी भी देश का इतिहास, यहाँ तक कि इसराइल का इतिहास भी मिस्र से पुराना नहीं है। सच तो यह है कि इसराइल राष्ट्र का जन्म ही मिस्र देश में हुआ था। याकूब के परिवार के 70 जन मिस्र गए थे और 400 वर्ष बाद उन्होंने मिस्र से प्रस्थान किया। उस समय वे 15 लाख हो गए थे। उस समय मिस्र एक प्राचीन सभ्यता था, उसका इतिहास आज भी है। वह आज भी एक देश है और विश्व की घटनाओं में मुख्य भूमिका निभाता है। मेरे मित्रों, इस अध्याय में उसका भविष्य महिमामय दर्शाया गया है। इस अध्याय में किसी भी देश के इतिहास के कारक, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य दर्शाए गए हैं। धर्मशास्त्र के इतिहास में मिस्र बहुत पहले से स्थान रखता है। जब अब्राहम मिस्र गया था और वहां परेशानी में पड़ गया था, आगे चलकर के हम देखते हैं कि यूसुफ भी मिस्र में दास होने के लिए बेच दिया गया था। इसके बाद याकूब अकाल के कारण अपने कुटुंब के साथ मिस्र जाकर रहने लगा। वहां उन्हें अंततः ईंटें बनाने के लिए दास बना लिया गया था। प्रतिज्ञा के देश में आ जाने के बाद उन्हें राजा आहाज और हिजकिया ने मिस्र के साथ संधि की और उन्हें विश्वास के योग्य ना पाया। मलाकी और मत्ती के मध्य के समय में इसराइल ने मिस्र के हाथों बहुत कष्ट उठाया था। प्रभु यीशु भी जन्म के बाद मिस्र ले जाया गया। प्रथम 3 शताब्दियों में सुसमाचार ने मिस्र में अनेक विश्वासी तैयार किए थे। उत्तरी अफ्रीका के इस भाग से कलीसिया के 3 महान संतों का आगमन हुआ है, अथनेसियस, ओरिजिन और अगस्टिन तथा अन्य संत भी हुए हैं। आज मिस्र इसराइल राष्ट्र के लिए एक कांटा है। तो आइए हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इस अध्याय में मिस्र के संबंध में की गई भविष्यवाणी की पूर्ति। यशाया के पुस्तक 19 अध्याय उसके एक पद में लिखा है, मिस्र के विषय में भारी भविष्यवाणी, देखो यहोवा शीघ्र उड़ने वाले बादल पर सवार होकर मिस्र में आ रहा है और मिस्र की मूर्ति उसके आने से थरथरा उठेंगी और मिस्रियों का हृदय बैठ जाएगा। मिस्र की मूर्ति पूजा परमेश्वर के दोषारोपण का मुख्य कारण है। हम यहेजकेल की पुस्तक के अध्ययन में इस विषय पर आएंगे। वहां परमेश्वर कहता है कि मिस्र देश से हर एक मूर्ति काट दी जाएगी। बाबुल जो मूर्ति पूजा का केंद्र था, उसके बाद मिस्र से अधिक मूर्ति पूजा कहीं और नहीं थी। रोमियो के पत्र 1 अध्याय उसके 21-23 पद में पौलुस ने जो कहा है वह मिस्र पर एकदम और बिल्कुल ठीक बैठता है। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया, वे अपने आप को बुद्धिमान जानकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। इतिहास से प्रकट होता है कि मिस्र आरंभ में एक परमेश्वर की उपासना करता था, परंतु आगे चल करके वे मूर्ति पूजा में ऐसे डूब गए कि आकाश के नीचे के प्रत्येक प्राणी की पूजा करने लगे, जैसे बैल, मेंढक, खटमल, मछली और हर प्रकार की चिड़िया। जब मूसा इसराइल को मिस्र से निकालना चाहता था, तब परमेश्वर को उनसे युद्ध करना पड़ा, जिसे मैं देवताओं का युद्ध भी कहता हूं। और परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उस देश पर विपत्तियां डाली। परमेश्वर ने उनकी हर एक मूर्ति पूजा पर प्रहार किया। सूर्य और नील नदी से लेकर भूमि पर मेंढक और खटमल सब पर, प्रत्येक विपत्ति मिस्र के प्रत्येक देवता पर लक्षित थे। परमेश्वर एक बार फिर बादलों पर सवार मिस्र के देवताओं का नाश करने आएगा। मित्रों, यह बड़ी रोचक बात है कि मिस्र देश से मूर्ति पूजा का अंत हुए युगों बीत गए हैं, क्योंकि अब वह एक मुस्लिम राष्ट्र है। यदि आप वहां दोबारा जाते हैं तो अब आप उस अंधकार को नहीं देख पाएंगे जो पहले प्राचीन काल में था। यशाया की भविष्यवाणी पूरी हो गई है। यशाया 19 उसके 2 पद में हम पढ़ते हैं, और मैं मिस्रियों को एक दूसरे के विरुद्ध उभारूंगा और वे आपस में लड़ेंगे, प्रत्येक अपने भाई से और हर एक अपने पड़ोसी से लड़ेगा, नगर नगर में और राज्य राज्य में युद्ध छिड़ेगा। मेरे मित्रों, यशाया के समय के आसपास मिस्र में अनेक राजा हुए, परंतु वे मिस्र का संचालन नहीं कर पाए थे। सेना भी उनकी आज्ञा का पालन नहीं करती थी। प्रजा प्रशासन का मान नहीं रखती थी। इस कारण छोटे छोटे नवाब अपने क्षेत्र पर राज करने लगे थे। मिस्र के ऊपरी क्षेत्र में 2 महान नगर थेबिस और कार्नक थे, और निचले क्षेत्र में भी महानगर थे। मेम्फिस मोप ने भी नगरों का विभाजन हो गया था। यशाया 19 उसके 3 पद में हम पढ़ते हैं, और मिस्रियों की बुद्धि मारी जाएगी और मैं उनकी युक्तियों को व्यर्थ कर दूंगा और वे अपनी मूर्तों के पास और ओझों और फुसफुसाने वाले टोनहों के पास जा जाकर उनसे पूछेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, घमंडी मिस्र देश ने अपनी सभ्यता अन्य देशों की तुलना में बहुत आगे बढ़ा ली थी। आज सूर्य के नीचे ऐसा कोई राष्ट्र नहीं है जो मिस्र की सभ्यता का ऋणी न हो। एक समय उसके इतिहास में ऐसा आया कि वह मूर्ति पूजा करने लगा और निराश होकर भूत सिद्धि में लग गया। आपको स्मरण होगा कि जब मूसा राजा को चमत्कार दिखाता था तो राजा के तांत्रिक भी वैसा ही करके दिखाते थे, परंतु अंत में वे मूसा से हार गए। मूसा के चमत्कारों की नकल करने का अर्थ था कि उनमें भी शैतानी शक्तियां थी, उनके पास ताकत थी। मिस्रियों की बुद्धि मारी जाएगी। वह समय भी आया जब वह राष्ट्र अत्यधिक पतित हो गया था। यशाया 19 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, परंतु मैं मिस्रियों को एक कठोर स्वामी के हाथ में कर दूंगा और एक क्रूर राजा उन पर प्रभुता करेगा। प्रभु सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। कठोर स्वामी, यह कठोर स्वामी कौन है इसके बारे में स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मिस्र पर अनेक आक्रमणकारियों ने हमला किया था और उस देश को मिट्टी में मिला दिया था। यशाया 19:5 में लिखा है, समुद्र का जल सूख जाएगा और महानदी सूख कर खाली हो जाएगी। समुद्र अर्थात नील नदी, जो उस देश का मुख्य जल स्रोत था। नदियां अर्थात नील नदी की नहरें। उस युग में नदी का डेल्टा खुला रखा जाता था क्योंकि नील बहुत मिट्टी लाती थी। यशाया 19:6 में आगे पढ़ते हैं, और नाले बसाने लगेंगे और मिस्र की नहरें भी सूख जाएंगी और नरकट और हुगले कुम्हला जाएंगे। यह ध्यान देने योग्य बात है कि ये नहरें आज भी सूखी पड़ी हैं। वह स्थान कभी अदन की वाटिका के समान रमणीय था, परंतु आज पर्यटक बताते हैं कि वह सूखा पड़ा हुआ है। नील के तीर पर हरियाली दिखाई ही नहीं देती है। नदियों के किनारे पर प्रायः जो हरियाली होती है वह नील नदी के किनारे पर नहीं है। परमेश्वर विशेष करके जो बात कहता है उस पर ध्यान दें। यशाया 19:7 पद में लिखा हुआ है, नील नदी का तट उजड़ जाएगा और उसके कछार की घास और जो कुछ नील नदी के पास बोया जाएगा वह सूख कर नष्ट हो जाएगा और उसका पत्ता तक न लगेगा। कछार की घास से उस समय चटाई बनाकर उस पर लिखा जाता था। वह मिस्र देश का एक बड़ा उद्योग था जिसके कारण मिस्र को बहुत आमदनी होती थी। मिट्टी की पट्टियों के बाद वह घास मनुष्य के लिए कागज का काम करती थी। फिनेक वासी ने संपूर्ण सभ्य संसार में इस घास से निर्मित चटाई का परिचय करवा दिया और यह चटाई नील नदी की घास से उत्पन्न होती थी। अब वह घास अपने आदि स्थान में दिखाई नहीं देती है। आज आप इस घास को वहां के संग्रहालय के समक्ष या कैरो के अंग्रेजी क्षेत्र में धनवानों के घरों में ही उगता देखेंगे। यह घास आज विलासिता का प्रतीक एक पौधा है, परंतु नील नदी के तीर पर वह नहीं उगती। परमेश्वर ने कहा था कि वहां वह नष्ट हो जाएगी। आप उसके नष्ट हो जाने का प्राकृतिक कारण बता सकते हैं, परंतु वह किया तो परमेश्वर ने ही। यशाया 19:8 पद में लिखा हुआ है, सब मछुए जितने नील नदी में बंसी डालते हैं विलाप करेंगे और लंबी लंबी सांस लेंगे, और जो जल के ऊपर जाल फेंकता है वे निर्बल हो जाएंगे। मेरे मित्रों, मिस्र का दूसरा बड़ा उद्योग था मछली व्यापार। नील नदी में मछलियों की भरमार थी। आपको स्मरण होगा कि मिस्र से निकलने के बाद जंगल में इसराइलियों को मिस्र देश की मछली याद आ रही थी, क्योंकि उस सूखे प्रदेश में मछली नहीं थी। परमेश्वर ने उन्हें बटेर दी, परंतु उन्हें उसमें अधिक रुचि नहीं थी। उन्हें मछली बहुत अच्छी लगती थी। आज नील नदी का मछली व्यापार समाप्त हो गया है क्योंकि वहां मछलियां नहीं है। भविष्यवाणी पूरी हो गई है। मेरे एक मित्र ने बताया कि उसने मिस्र में विशेष करके नील नदी में मछली पकड़ने वालों को देखा है, परंतु 2 या 3 से अधिक लोग वहां दिखाई नहीं देते। परमेश्वर ने कहा था कि मछुआरे दुख मनाएंगे क्योंकि वे मछलियां पकड़ नहीं पाएंगे। यशाया 19:9 पद में हम पढ़ते हैं, फिर जो लोग धुने हुए सन से काम करते हैं और सूत से बुनते हैं उनकी आशा टूट जाएगी। मिस्र में सन उगता था और बहुत ही अच्छी कोटि का सूती कपड़ा तैयार किया जाता था। वह रेशम की टक्कर का कपड़ा था। कहा जाता है कि मछियारा अपना मछली पकड़ने का जाल अंगूठी से निकाल लेता है। मिस्र का यही सूती कपड़ा इसराइल के जंगल प्रवास के समय मिलाप वाले तंबू में लगा था। वे अपने साथ वह कपड़ा ले गए थे। परमेश्वर ने कहा था कि उनका वह व्यवसाय नष्ट हो जाएगा और ऐसा ही हुआ। यशाया 19:10 पद में लिखा है, मिस्र के रईस निराश और उसके सब मजदूर उदास हो जाएंगे। उनका मछली व्यापार समाप्त होना था और ऐसा ही हुआ। डॉक्टर F.C. जेनिंग ने लिखा, जैसा कि कहा जा चुका है, मिस्र का धन उसकी नदियों में था। उसके परिणाम के कारण उसे यहाँ समुद्र कहा गया है। आज कुछ भी नहीं बचा है। यशाया 19 अध्याय के 11 पद में लिखा है, निश्चय सुवन के सब हाकिम मूर्ख हैं और फिरौन के बुद्धिमान मंत्रियों की युक्ति पशु की सी ठहरी। फिर तुम फिरौन से कैसे कह सकते हो कि मैं बुद्धिमानों का पुत्र और प्राचीन राजाओं की संतान हूँ? राजाओं ने आपस में ही अर्थात भाइयों और बहनों में ही विवाह किया कि उनकी संतान मंद बुद्धि थी। परमेश्वर ने कहा यशाया 19 अध्याय उसके 13 पद में, सुवन के हाकिम मूढ़ बन गए हैं, नोप के हाकिमों ने धोखा खाया है, और जिन पर मिस्र के गोत्रों के प्रधान लोगों का भरोसा था उन्होंने मिस्र को भरमा दिया है। नोप मेम्फिस नगर है, उन्होंने मिस्र को भरमा दिया है। हम यूनानी विकोपेट्रा की कहानी जानते हैं कि वह मिस्र की रानी बनी थी। यशाया 19 के 14 पद में लिखा हुआ है, यहोवा ने उसमें भ्रमता उत्पन्न की है, उन्होंने मिस्र को उसके सारे कामों में उस मतवाले के समान कर दिया है जो ममन करते हुए डगमगाता है। यह मिस्र के पतन का जीवंत चित्रण है। यशाया 19 के 15 में आगे हम पढ़ते हैं, और मिस्र के लिए कोई ऐसा काम न रहेगा जो सिर या पूंछ से अथवा प्रधान या साधारण से हो सके। मेरे मित्रों, इस पद के अनुसार उद्योगों और व्यापार का विनाश होगा, इसके परिणाम स्वरूप देश दरिद्र और अभागा हो जाएगा। यशाया ने भविष्यवाणी की थी कि झूठे धर्म का अंत होगा, संसाधन समाप्त हो जाएंगे और आत्मिक शक्तियों में सामर्थ्य नहीं रहेगी। इन सब के समाप्त हो जाने के बाद मिस्र के पतन की भविष्यवाणी पूरी होगी। आज आप कैरो जाकर इसकी पुष्टि देख सकते हैं। भविष्यवाणी जो पूरी नहीं हुई है उससे हम यशाया 19 उसके 16 पद में पढ़ते हैं, उस समय मिस्री स्त्रियों के समान हो जाएंगे और सेनाओं का यहोवा जो अपना हाथ उन पर बढ़ाएगा उसके डर के मारे वे थरथराएंगे और कांप उठेंगे। उस समय से अर्थ है यह दूरस्थ भविष्य की बात। उस समय अर्थात महाक्लेश के समय मिस्र एक स्त्री के समान भयभीत होगा। यशाया 19 के 17 पद में लिखा है, और यहूदा का देश मिस्र के लिए यहां तक भय का कारण होगा कि जो कोई उसकी चर्चा सुनेगा वह थरथरा उठेगा। सेनाओं के यहोवा की उस युक्ति का यही फल होगा जो वह मिस्र के विरुद्ध करता है। मेरे मित्रों, आप सोचेंगे कि यह पद आज पूरा हो रहा है जब मिस्र में इमारतों को देखते हैं और कैरो के संग्रहालय को रेत के बारिश से बम से सुरक्षित पाते हैं। यशाया 19 उसके 18 पद में लिखा है, उस समय मिस्र देश में 5 नगर होंगे जिनके लोग कनान की भाषा बोलेंगे और यहोवा की शपथ खाएंगे, उनमें से एक का नाम नाश नगर रखा जाएगा। मेरे मित्रों, यह संपूर्ण अंश पूरा होने के लिए प्रभु के दिन की प्रतीक्षा करता है। यशाया 19 उसके 19 और 20 पद में लिखा हुआ है, उस समय मिस्र देश के बीच में यहोवा के लिए एक वेदी होगी और उसकी सीमा के पास यहोवा के लिए एक खंभा खड़ा होगा, वह मिस्र देश में सेनाओं के यहोवा के लिए चिन्ह और साक्षी ठहरेगा, और जब वे अंधेर करने वाले के कारण यहोवा की दुहाई देंगे तब वह उनके पास एक उद्धारकर्ता और रक्षक भेजेगा और उन्हें मुक्त करेगा। यहोवा के लिए एक वेदी, कुछ धार्मिक पंथ इसे पिरामिड भी कहते हैं, परंतु पिरामिड न तो वेदी है और न ही लाठ है, वे तो राजा और रानी के भयानक मजार हैं। चिन्ह, यह चिन्ह क्या है? क्रूस। एक दिन मिस्र प्रभु यीशु के क्रूस की ओर निहारेगा। यशाया 19 उसके 21 और 22 पद में लिखा है, तब यहोवा अपने आप को मिस्रियों पर प्रकट करेगा और मिस्री उस समय यहोवा को पहचानेंगे और मेलबलि और अनबलि चढ़ाकर उसकी उपासना करेंगे और यहोवा के लिए मन्नत मानकर पूरी भी करेंगे। यहोवा मिस्रियों को मारेगा, वह मारेगा और चंगा भी करेगा, और वे यहोवा की ओर फिरेंगे और वह उनकी विनती सुनकर उनको चंगा करेगा। मिस्र का भविष्य महिमामय होगा। मिस्र इसराइल के साथ प्रभु के राज्य में प्रवेश करके आनंद मनाएगा। आज की स्थिति में तो यह असंभव सा लगता है, परंतु परमेश्वर कर सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यशाया 19 के 23 पद में लिखा है, उस समय मिस्र से अश्शूर जाने का एक राजमार्ग होगा और अश्शूरी मिस्र में आएंगे, और मिस्री लोग अश्शूर को जाएंगे और मिस्री अश्शूरियों के संग मिलकर आराधना करेंगे। मेरे मित्रों, यह मुख्य मार्ग सेनाओं के लिए नहीं होगा। इस मार्ग से आराधक यरूशलेम आराधना करने आएंगे। वे यरूशलेम में प्रभु यीशु राजा की आराधना करेंगे। यह क्या ही अद्भुत होगा। यशाया 19 उसके 24 पद में लिखा है, उस समय इसराइल, मिस्र और अश्शूर तीनों मिलकर पृथ्वी के लिए आशीष का कारण होंगे। प्रभु के राज्य में मिस्र का ऊंचा स्थान देखिए। यशाया 19 उसके 25 पद में लिखता है, क्योंकि सेनाओं का यहोवा उन तीनों को यह कहकर आशीष देगा, धन्य हो मेरी प्रजा मिस्र और मेरा रचा हुआ अश्शूर और मेरा निज भाग इसराइल। पतित और परित्यक्त मिस्र के लिए अभी आशीषें आने वाली है। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 19 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 20 का एक मुख्य विचार यह है कि 3 वर्ष में इसराइल पर आक्रमण होगा। अध्याय 19 सहस्त्र वर्षीय राज्य में मिस्र के लिए आशीषों की पराकाष्ठा के साथ अंत हुआ था। इस अध्याय में निकट भविष्य की होने वाली घटनाओं का उल्लेख है जो यशाया को परमेश्वर का सच्चा भविष्यद्वक्ता सिद्ध करेगी। तो आइए हम पढ़ें यशाया 20 अध्याय के 1 पद को। लिखा है, जिस वर्ष में अश्शूर के राजा सरगोन की आज्ञा से तर्तान ने अश्दोद आकर उससे युद्ध किया और उसको ले भी लिया। दूसरे राजाओं की पुस्तक 18 अध्याय उसके 17 पद में यह उल्लेख किया गया है कि अश्शूर सेना का सेनापति तर्तान अश्दोद आया था। अश्दोद उत्तरी राज्य का नगर था। दूसरे राजाओं की पुस्तक 17 अध्याय के 3 पद में शल्मनेसेर का नाम आया है। शल्मनेसेर के बाद सारगोन राजा हुआ था। धर्मशास्त्र में यही एक स्थान है जहां सारगोन का नाम आया है। आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व इतिहासकार स्वीकार नहीं करते थे कि सारगोन कभी हुआ है, क्योंकि इतिहास में उसका नाम कहीं नहीं है। तथापि पुरातत्ववेत्ताओं ने खोज की है कि उसके नाम को अश्शूर भाषा में शारुकीन कहते हैं और उसके राज्य के अनेक प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। यशाया 20 के 2 पद में लिखा है, उसी वर्ष यहोवा ने आमोस के पुत्र यशाया से कहा, जा और अपनी कमर का टाट खोल और अपनी जूतियां उतार। अतः उसने वैसा ही किया और वह नंगा और नंगे पांव घूमता फिरता था। मेरे मित्रों, यशाया को जीता जागता उदाहरण बनना था कि इसराइल किसी के साथ गठबंधन में न पड़े, विशेष करके मिस्र के साथ। यशाया नंगा नहीं था क्योंकि वह नग्नता स्वीकार नहीं थी। यशाया को विलाप का वस्त्र उतारना था जिसके कारण जनता आश्चर्य से उसे देखे और यशाया अपना वचन सबको सुना पाए। यहां एफ डेलिच के शब्द महत्वपूर्ण हैं। यशाया से जो करने को कहा गया वह प्रथा के विरुद्ध था, मर्यादा के विरुद्ध नहीं था। यशाया 20 अध्याय के 3 पद में हम पढ़ते हैं, तब यहोवा ने कहा, जिस प्रकार मेरा दास यशाया 3 वर्ष से उघाड़ा और नंगे पांव चलता आया है कि मिस्र और कूश के लिए चिन्ह और लक्षण हो। यशाया को इसराइल में ऐसे विचरण करना था कि जनता समझ पाए कि मिस्र के साथ क्या होने वाला था। हमें कहा गया है कि उसे देखकर लोग आश्चर्य करें और चिन्ह को समझ पाए। तब हम आगे पढ़ते हैं यशाया 20 अध्याय के 4 पद में, उसी प्रकार अश्शूर का राजा मिस्र और कूश के लोगों को बंदी बनाकर देश निकाला करेगा, क्या लड़के क्या बूढ़े, सबों को बंदी बनाकर उघाड़े और नंगे पांव और नितंब खुले ले जाएगा, जिससे मिस्र लज्जित हो। क्योंकि मिस्र हो या इथोपिया, वे स्वयं की सुरक्षा में समर्थ नहीं है, इसलिए वे इसराइल के लिए उचित मित्र राष्ट्र नहीं हो पाएंगे। मिस्र और इथोपिया दोनों पर सारगोन अश्शूरी ने आक्रमण किया और जैसा यशाया ने कहा था वैसा ही उनके साथ हुआ। मेरे मित्रों, यहां पर हम देखते हैं कि जो भी बातें परमेश्वर ने अपने दास यशाया के द्वारा उन तक पहुंचाई थी वह वैसा ही पूर्ण हुआ, क्योंकि उन्होंने देखने के बाद भी अपने मनों को नहीं बदला। मेरे मित्रों, आज आपके लिए और मेरे लिए भी यही चेतावनी है कि परमेश्वर जब हमसे बातें करता है, हमें सिखाता है, सुनाता है, बताता है, तो उसका पालन करें, क्योंकि परमेश्वर इतनी बड़ी घटनाओं को हमें बता करके स्पष्ट करता है कि वह आज भी प्रभु है, आज भी वह आपका और मेरा प्रभु है जो अद्भुत कार्य करता है, जो मेरे और आपके जीवन को जानता है। क्या आप उसके भय में अपना जीवन बिता रहे हैं या अपनी मर्जी से जीवन जी रहे हैं? मेरे मित्रों, आइए आज हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपें और उसकी सत्यता को ग्रहण करें। आज यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
मंदिर खुदाए पाक का प्यारो तुम्हें तो, घर उसका पाक रखना वो भी तुम्हें तो। मंदिर खुदाए पाक का प्यारो तुम्हें तो, घर उसका पाक रखना वो भी तुम्हें तो। अंधकार इस जहान का भटकाएगा तुम्हें, डरना नहीं जहान की ज्योति तुम्ही तो हो। अंधकार इस जहान का भटकाएगा तुम्हें, डरना नहीं जहान की ज्योति तुम्ही तो हो। मुंजी मसीह है पाप का खत भी तुम्ही तो हो, घर उसका पाक रखना वो भी तुम्ही तो हो। मंदिर खुदाए पाक का प्यारो तुम्ही तो हो, घर उसका पाक रखना वो भी तुम्ही तो हो। अब जो खुदाए पाक से मांगी दुआ।